हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, सब लोग बोलो। ऐसा है कि हम लोग राधा माधव भजन जब करते हैं तो राधा माधव भजन ये ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा है और ये भजन गौलोक वृंदावन का वर्णन है। चार लाइन में गौलोक वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है इसके अंदर। इसलिए जब भी हम ये भजन गाते हैं, कुछ समय के लिए गाते हैं, 2-3 मिनट के लिए, लेकिन सबको अपनी चेतना को अब बाहरी दृष्टि से निकालकर अपना जो भी आसमंत है, मन में विचार चल रहा है मुंबई का, इधर का, सेवा का, तो सब कुछ को हटाकर कुछ समय के लिए भगवान के धाम में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हरेक नाम के पीछे लीला है। राधा माधव कुंज बिहारी गिरिवर धारी यमुना तीर वनचारी, हर नाम के पीछे लीला है। तो इसलिए सबका ध्यान उन नामों के उच्चारण में, नामों के अर्थों में हमको लगाना है।
राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा, हरि बोल।
सब लोग बोलिए गौरांगा हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका पीलीपुकुर धाम में स्वागत है। ये बहुत ही दिव्य धाम है श्रीमती राधा रानी का। यहाँ पर बरसाने का जो वास्तविक वातावरण है उसका अनुभव आपको होगा। पंछी बोल रहे हैं, तोता बैठे हैं, मोरनी है, मोर है, हर प्रकार के कोयल, हर प्रकार के पंछी यहाँ पर उपस्थित है। और गौर से आप देखेंगे तो हर प्रकार के वृक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कदम के वृक्ष हैं, नीम के वृक्ष हैं, बरगद का पेड़ है, फिर अशोक वृक्ष है, पलाश वृक्ष है, हर प्रकार के वृक्ष यहाँ पर, अर्जुन वृक्ष हैं, ये सब दिव्य वृक्षों में गिने जाते हैं। और वृक्षों के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो जो भी चेतना वातावरण में अवेलेबल है, उपस्थित है, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये भगवान का धाम है, यहां पर नित्य भगवान की लीला चलती है। तो ये वृक्ष जो है वो सारी चेतनाओं को ग्रहण करते रहते हैं। और जब भी हमारे जैसे लोग दूर दूर से आते हैं तो उनको उस चेतना का लाभ देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये उनकी हमारे लिए देन है। कुछ लेते हैं और लोगों को देते रहते हैं, भगवान से लेते हैं और सब जनता को बांटते रहते हैं। उसी तरह से हमको भी होना चाहिए। हम जो भी भगवान से ग्रहण करते हैं, जो भी शक्ति ग्रहण करते हैं, जो बुद्धि प्राप्त होती है, वो सब जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए नहीं, जनों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए वो लोगों को देना चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है, कल सवेरे मैंने यात्रा शुरू होने के पहले हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज को फोन किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी मुझे। बहुत सुबह सुबह मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के। उन्होंने कहा कि बिकम अ हम्बल सर्वेंट ऑफ डिवोटीज एंड ब्रजवासीज एंड वॉट एवर स्किल्स यू हैव प्लीज डेडिकेट देम इन देयर सर्विस एंड दिस इज हाउ यू कंडक्ट यूर सेल्फ वेन यू आर इन धाम। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जो भी कुशलता, जो भी स्किल्स हमको मिले हैं भगवान की दया से, वो सारे स्किल्स का, कुशलता का जो उद्देश्य है वो केवल भगवान की सेवा है। ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषि का मतलब हमारी इंद्रिया, और ऋषिकेश मतलब ऋषि के ईश, भगवान जो है वो इंद्रियों के स्वामी है, हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान है। तो हमारे इंद्रियों की जो कार्य है वो सब भगवान के इंद्रियों के संतुष्टि के लिए हमको लगाना चाहिए। और जैसे शिवजी भी शिव पुराण में अपने प्रिय पत्नी पार्वती को बताते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, उसका आगे का मुझे हाफ श्लोक बराबर से याद नहीं आता, उसका अर्थ यह है कि सभी तस्मात भरतरम देवी तदीया नाम समारचनम, इसका अर्थ यह है कि सभी देवताओं में से, सभी देवताओं की आराधना में से श्रेष्ठ आराधना विष्णु की है, और उससे भी अधिक श्रेष्ठ जो है विष्णु के भक्तों की आराधना है, मतलब सेवा। उससे भी अधिक विष्णु जी, विष्णु को प्रसन्नता होती है जब उनके भक्तों की सेवा होती है, और उस सेवा से उनके भक्त प्रसन्न होते हैं। तो हमारी जो कुशलताएं हैं, हम भगवान तो जानते नहीं है, उनको अभी तक हम उनका जो अनुभव नहीं कर पा रहे अनुभूति, लेकिन भगवान के भक्त हमारे सामने हमेशा रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों का संग हमको मिला है, इसलिए उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपलेस्ट मेथड। क्यों सिंपल है? क्योंकि भगवान के भक्त बहुत सिंपल होते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता है, कुछ प्रसाद खिला दिया बहुत खुश हो जाते हैं, गले लगा दिया मीठी बात की बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ा बहुत सेवा कर दिया बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे ही वो खुश हो जाते हैं तुरंत भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को संतुष्ट करना ये हमारे जीवन का बहुत श्रेष्ठ और बहुत सीधा साधा मार्ग है, मोस्ट सब्लाइम एंड मोस्ट सिंपल एट द सेम टाइम। तो हमारी सारी कुशलताएं भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना और उसके अनुसार भगवान को प्रसन्न करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, केवल बरसाने में नहीं, जहां जहां भी हम रहेंगे, भारतवर्ष के अनेक राज्यों में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, जब तक मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन का समय प्राप्त है, तब तक हमें सब लोगों को अपने जितनी जितनी हमारी कुशलताएं हैं सब भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना है। और हमारी सारी कुशलताएं, भगवान कहते हैं कि जीव के अंदर जो शक्ति है, क्षमता है, वो मैं हूं। भगवान गीता में बताते हैं 10वें अध्याय में कि सबके भीतर जो समर्थता है, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, वो सब भगवान का है। तो दृष्टि है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, बुद्धि है, इंद्रियों में आपके शक्ति है, हाथ पांव में शक्ति है, हृदय चल रहा है, पचन करने की शक्ति, जो भी कुछ आपके अंदर है वो सब भगवान का दिया हुआ है। बटन बंद कर देंगे सब बंद हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि इंद्रियों की सेवा में लगाकर कर्मों के बंधन में फंसने के बजाय हम सब लोग भगवान की सेवा में लगें। और सबसे प्रथम सेवा क्या है? सबसे प्रथम सेवा श्रवणम, सुनना, सुन के ज्ञान प्राप्त करना। और दूसरी प्रथम सेवा है, जो सर्वोच्चम सेवा है, वो है कीर्तनम, भगवान के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन। यहां से हमारे जीवन की भक्ति की शुरुआत होती है। तो आप सबको मैं शुभकामना देता हूं, किसी जीवन में आप अपनी सारी क्षमताओं को, कुशलताओं को भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना, यश मिलेगा आपको इसमें, आपके मैं शुभकामना करता हूं। श्रीमती राधा रानी से, सखियों से, सखाओं से, ब्रजवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को भगवान ऐसी मति दे, सन्मति, कि आप अपनी सारी कुशलताएं उनकी सेवा में लगाएं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक भक्त को लीला में समझाते हैं, गौर लीला में, कि कभी भी भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। भक्तों का अपराध करना तो दूर रहा, भक्तों के बारे में मन में गलत विचार भी नहीं लाने चाहिए। मैं अभी भी आते वक्त उस लीला को पढ़ रहा था, चैतन्य भागवत में वो लीला आती है, वृंदावन दास ठाकुर ने उसको लिखा है, जो व्यास देव जी के अवतार है। उनको नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ मन में संदेह था कि ऐसे कैसे इनका व्यवहार है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के व्यवहार को समझना मुश्किल है, सामान्य जीव उनके व्यवहारों को समझना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो अवधूत है। अवधूत का मतलब वो किस समय क्या करते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, और समझ में तो आने का चांस ही नहीं है। तो वो हमेशा उनके मन के मन में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में भाग लेते हुए भी नित्यानंद प्रभु के बारे में उनके मन में शंका थी कि क्या है ये। तो वो एक बार उनको रहा नहीं जाता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि ये क्या है सब, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका व्यवहार कैसा है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बड़ी लंबी कहानी बताती। क्यों बताते लंबी कहानी? एक बात बोलते ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से हमारे मोटे दिमाग में कुछ बात घुसती नहीं है इसलिए उसको पूरे कहानी वहानी बना के हाँ पूरे थोड़ा जोक्स वोक्स डाल के समझाना पड़ता है ताकि हमारी मति जागृत रहे और वो कहानी सुनने में मन लगे, उसके बाद में फिर उसका सार जो है वो कहानी के माध्यम से अपने दिमाग में चला जाए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, एक बार मैं वो नहीं बताऊंगा यहां पर क्या हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी का ऐसा एक लीला है भगवान की इच्छा से। ब्रह्मा जी तो भगवान के बड़े परम श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हैं, यहाँ पर पर्वत बन के बैठे हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, फिर भी पत्थर बन के सबके चरणों की धूली ले रहे हैं। हम भी जाते हैं पापी लोग वहां पर, हमारे चरण भी उनको ले लेते हैं, बार बार दंडवत करना चाहिए हमको। तो ब्रह्मा जी एक बार ऐसा कार्य करते हैं, जो वो मरीचि के पुत्र थे छे, मरीचि एक प्रजापति है, ब्रह्मा के द्वारा जन्म दिया गया उनको और प्रजा और योनियों का निर्माण करने में मदद करते हैं वो। तो वो छह पुत्र जो है वो देखते हैं उनको वो काम करते हुए और वो बहुत उनको हंसते हैं और निंदा करते हैं उनकी। जैसे ही वो काम करते हैं तुरंत उनका पतन होता है। मरीचि मतलब कैसे, मरीचि के पुत्र जो है वो स्वर्ग में रहा करते थे और वहां से प्रजाओं का निर्माण करते थे अन्य लोकों में। तो अचानक उनका पतन हो गया, वो हिरण्यकश्यपु के ग्रैंड सन्स के रूप में जन्म लिया उन्होंने। कहां से कहां पहुंच गए देखो, केवल सोचा या केवल देखा और मन में बुरा विचार आया और हंसे वो उनको देख के। जाके कोई ऐसा बोला नहीं क्या ब्रह्मा जी आप क्या करते हो, ऐसा नहीं बताया। तो अचानक तुरंत उनका पतन हो गया। तो हिरण्यकश्यपु के ग्रैंड सन्स के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो इंद्र ने अपने वज्र से उनको बहुत परेशान किया, हैरेसमेंट, कंप्लीट हैरेसमेंट एंड टॉर्चर, और उनका मृत्यु हो गया। मतलब वो दर्द कितना सहा उन्हें, सबसे पहले तो वो ऊंचे लोक से पृथ्वी पर आए, यहां पर उन्होंने दुख भोगा, राक्षस के कुल में जन्म लिया, प्रतिकूल जन्म में परिवार में, इंद्र से उनको बहुत परेशानी हुई, बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई। उसके बाद में अगले जन्म में वो देवकी के गर्भ में छह पुत्रों के रूप में आए, जिनका खूंखार राक्षस कंस के हाथों में पत्थर पर पटक पटक कर गर्भावस्था में निकलते ही वध किया गया। सोच सकते हैं आप कितना दर्द होगा उसके अंदर। उन नाटिका आपने देखी ना, द्वारकाधीश प्रभु कैसे पकड़े थे, वो हंस रहे थे अभी हम इसको पत्थर पर पटक के मार देते हैं और सबके सामने जेल के दीवार ऊपर एक एक बालक के सर का निशान लगा हुआ है। बहुत ही क्रूरता से उसका हर बच्चे का जन्म होते ही वध किया गया। तो ये छह बालक जो थे ये मरीचि के पुत्र थे। तो उन्होंने कहा एक उन्होंने पाप किया और क्या क्या उनको भोगना पड़ा, इसलिए वो कहते हैं कि आप कभी भी भक्तों के विषय में गलत फहमी मन में मत लाना। डोंट ट्राई टू स्पेकुलेट अबाउट देम, डोंट इमेजिन समथिंग विच इज नेगेटिव अबाउट देम। और इसके आगे छह अपराध बताए हैं, भक्तों को देखकर आनंदित न होना, हर्षनम दर्शनम न हर्षनम, अगर आपको देख के उनको खुशी नहीं हो रही है, अरे आ गया अभी पता नहीं दो घंटा लेगा, मेरा प्रसाद भी देना पड़ेगा, अभी घर में कुछ है भी नहीं, क्या करे, परेशान करने वो आ जाते हैं, ऐसे मन में विचार तो आता था, अरे अभी निकलने का समय है, अभी वो आ गए कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कितना भी व्यस्त आप होगी लेकिन उनके हंसते हुए स्वागत करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए, क्षेम कुशल पूछना चाहिए, बिठाना चाहिए, जल देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, फिर कहना चाहिए प्रभु जी कुछ विशेष काम से आए थे आप, तो हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, आप बताइए क्या सेवा करें आपकी, थोड़ा समय बाकी है हमारे पास। उनको न दिखाते हुए उनको ऐसा महसूस नहीं कराना देना चाहिए कि अरे परेशान हो गए इनको, हम यहाँ पर आ गए, गलती कर दिया हमने। हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलते ना, अभी जो देह बोली हमारी है उसको देखकर लगना नहीं चाहिए कि उनको हम अभी यहाँ पर हमारा स्वागत नहीं है, वेलकम नहीं यहाँ पर अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी वैष्णव को बातों से हृदय को दर्द नहीं देना चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए किसी भी विचार से, किसी प्रकार से, शब्दों से नहीं करना चाहिए, देह बोली से या देखने से, नजर से नहीं करना चाहिए, उनको शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई मारामारी भी कर लेते हैं, को कष्ट देते हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, मन से भी नहीं करनी चाहिए, विचारों से भी नहीं करनी चाहिए, शरीर से भी नहीं करनी चाहिए। और हम बोलेंगे हम थोड़ी भक्त हैं, हमको क्या परेशान, को कैसे पहचाने भक्त को? लेकिन आप भक्त हो या ना हो, जो भी वैष्णव का अपराध करता है भगवान उस अपराध को बड़ी गंभीरता से अकाउंट में ले लेते हैं, बड़ा कड़ा दंड देते हैं उसको। जाने और अनजाने में भी आप करेंगे तो बहुत भयंकर अपराध है ये। जगाई और मधाई जो हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष के अवतार थे कलयुग में, इतने भयंकर पापी थे वो, इतने भयंकर पापी थे कि दुनिया के जितने भी जनसंख्या है वो सब मिलकर पूरे जीवन में जितने पाप नहीं कर सकते थे वो एक दिन में करते थे, इतने भयंकर पापी थे वो। मतलब उसका चैतन्य भागवत ने बहुत विस्तार में वर्णन दिया कि क्या क्या प्रकार के पाप करते थे वो, लेकिन फिर भी उनको भगवान के द्वारा कुछ दंड नहीं दिया गया। जब तक उन्होंने भक्त नित्यानंद प्रभु का अपराध नहीं किया तब तक उनको भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जो अभक्त लोग होते हैं उनके द्वारा जो पीड़ा होती है उनको भगवान ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वो डिपार्टमेंट यमराज को देख रखा है, वो अपना अपना हिसाब किताब रखते हैं चित्रगुप्त के द्वारा और अपना काम करते रहते हैं, उनके अंदर कोई दया वया नहीं होती है, वो देखते हैं क्या हिसाब है इसका, उसका जवाब दो उसको, बस दैट्स ऑल, कोई दया वया कंसेशन नहीं होता उसके अंदर, एग्जीक्यूशन ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन दैट्स ऑल। लेकिन जब भक्तों का अपराध होता है तो भगवान स्वयं उसमें घुस जाते हैं, ही गेट्स इन्वॉल्व्ड। जब कोई बड़ा आदमी होता है ना वो अपने काम बांट लेता है लेकिन कुछ कुछ काम खुद करता है वो, वैसे अगर भक्त का अपराध होता है तो वो सहन नहीं कर सकते। हमारे घर पे आप आए, हमारी बालिका को बहुत प्यार किया आपने, बहुत नहीं हमको 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 आके बहुत स्तुति किया, हमको गिफ्ट दिया, हैप्पी बर्थडे किया, अच्छा अच्छा खाना लाया हमारे लिए, और जाते वक्त हमारे बेटे के एक तमाचा मार के चले गए आप, या तो कुछ उसको दुख दिया आपने, कुछ चिमटा निकाला या कुछ ऐसे उसका खिलौना खींच लिया आपने, या कुछ उसको कुछ भी दर्द दिया उसको, तो क्या करूंगा मैं? सारे खिलौने आपने जो दिए थे मुझे, मेरे खिलौने मतलब गिफ्ट, सब खिड़की के बाहर फेंक दूंगा मैं, और डंडा निकाल के आऊंगा और पीटूंगा अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे मेरे स्तुति की परवाह नहीं है, मेरी बालिका को कष्ट दिया तो मैं उससे ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। इसलिए शांति रखो जरा। तो जैसे हम है वैसे भगवान है, भगवान हमारे पिता हैं और भक्त लोग उनको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, और जब उनका अपराध होता है किसी भी तरह से दुख पहुंचता है तो भगवान सहन नहीं करते, वो खुद उसका हिसाब किताब अपने हाथ में लेते हैं और दंड देते हैं उसको अपने निगरानी में पर्सनली, ऐसा होता है वो। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए वैष्णवों का। और आप बोलेंगे कौन वैष्णव है यार, तो बड़े बड़े वैष्णव जो उनका अपराध नहीं करना चाहिए, नव से किया जो कल आए परसों आए कुछ नहीं है। ऐसे कहा गया कि भगवान की दृष्टि में जो अभी अभी भक्त बना है उसने एक बार भगवान का नाम लिया है उसको भी भगवान प्रेम करते हैं, और भगवान के लिए किसी भक्त का अपराध जो है वो इक्वल है। वही कोई गुरु महाराज है उनका अपराध किया तो ज्यादा तकलीफ हो गई, ऐसा होता है, लेकिन भगवान के लिए हर एक भक्त जो है वो अभी अभी भगवान का नाम लिया है वो भी कीमती है। क्योंकि आप क्या जानते हैं कि पिछले कितने जन्मों से उसने साधना किया होगा, आज आपके सामने जो आपका दृष्टि है लिमिटेड दृष्टि जो है उसको लेकर नजर में आ रहा है कि अभी अभी आया है, अभी तक मांस खा रहा था, अभी तक दारू पी रहा था, अभी अभी ला रहा है मंदिर में ला रहे हैं हमको, तो उनको हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जो भगवान का नाम लेता है वो पूजनीय है, क्योंकि जैसे वो भगवान का नाम लेता है ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में उसकी पूजा का साहित्य बटोरना तैयार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक दिन ये हमारे ही लोक से गुजरते हुए गोलोक वृंदावन जाएगा, तो उसकी पूजा का साहित्य जो है वो बटोरना चालू कर देते हैं, स्टार्ट्स कलेक्टिंग द पैराफर्नेलिया ऑफ वर्शिप ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज ही नोज वंस ही टेक्स द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा ही इज श्योरली गोइंग टू एंटर गोलोक वृंदावन एंड ही विल पास थ्रू ब्रह्मलोका, सो आई विल वर्शिप हिम व्हाइल गोइंग टू गोलोक वृंदावन। ऐसी महिमा है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इस धाम में ये बात बहुत जल्दी समझ में आएगी, वातावरण भी अनुकूल है इसके लिए। तो बात थी अपने कुशलताओं की भक्तों की सेवा में लगाने की। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, जैसे भगवान को दुख होता है वैष्णवों को कष्ट देने में, उतना ही आनंद उनको होता है जब आप वैष्णवों को प्रसन्न करेंगे। जैसे आप मेरे घर पे आएंगे, पहले मेरी बेटी को प्यार करेंगे, उसको बख्शिश देंगे, कुछ गिफ्ट लाएंगे, और मुझे कुछ नहीं देंगे, फिर भी मैं आपसे प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मैं जो जिस पर मैं प्रेम करता हूं उसको आप प्रेम करेंगे तो मैं उससे बहुत खुश हो जाऊंगा। वो अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिर लव मी लव माई डॉग, इज दैट राइट? यूएस यूके दे से लाइक दैट, फिर लव मी लव माई डॉग। तो पहले वो क्या करते हैं, घर में आते हैं और बड़े उनके कुत्ते से प्रेम करते हैं, कुत्ते को प्रेम दुलारते हैं, ऐसा ऐसा चुम्मा देते हैं, फिर मालिक से बात करते हैं तो मालिक खुश हो जाता है, फिर अपना काम हो जाता है। तो यहां पर हम भगवान के भक्त हैं, बनाना चाहते हैं बनने अपने आप को, तो हमको भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना का प्रयत्न करना चाहिए। तो सब लोग अभी आप जा रहे हो ये वन में जाते वक्त विचार कर लेना, बिल्कुल पक्का निश्चय कि आपको अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हमारी वाचा को, हमारी बुद्धि को, हमारे कार्यों को, हमारे कुशलताओं को, सबको भगवान की सेवा में लगाना है, तभी जाकर आप इस दुनिया के जन्म मृत्यु के चंगुल से फंसे हुए हो वो मुक्त हो सकते हो। ठीक है, तो ये पीली पोखर धाम है, यहां पर एक बार राधा रानी अपने सखियों के साथ में बचपन में बाल्यपन में खेल खेल रही थी। सब लोग खेलते ना, घर घर खेलते हैं, है ना, कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई रसोई करता है, कोई बच्चे बन जाते हैं, फिर उनको स्कूल लेके जाते हैं, फिर वो सब्जी खरीदने जाते हैं, सब खेल खेल में होता है। छोटे छोटे बर्तन होते हैं, छोटे चूल्हे होते हैं, तो वैसे ही खेल रहे थे, मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के व्यंजन, मिट्टी का चावल, मिट्टी का शक्कर, मिट्टी का सब कुछ था। और बड़े प्रेम से वो जब बालक लोग खेलते हैं ना, आप देखा होगा, हम भी खेले बचपन में, एकदम मग्न होकर खेलते हैं उसके अंदर, हाँ पूरा सिस्टमैटिक करते हैं, जो माता पिता करते हैं वो सिस्टमैटिक करते हैं खेल खेल में, बहुत मजा आता है उसके अंदर। तो ये तो सखियां हैं भगवान की, राधा रानी सब मिलकर अच्छा तरह से यहाँ पर खेल रहे थे। तो वो उनके खेल खेल में खीर बन रही थी, रज ही है, मट्टी है, ब्रज की मट्टी रज है, उसी का चावल में उसी की खीर बन रही थी। उतने में वहां से दुर्वासा मुनि आते हैं, तो सब सखियां यहाँ पर कहती आई आई महाराज जी, आई आई बढ़िया खीर बन रही है, आप खा लो, क्योंकि वो इतने मग्न है ना खेल में। दुर्वासा मुनि को गुस्सा आता है बहुत, क्या समझती हो तुम, मजाक कर रही हो, भस्म कर देंगे आपको। तो एकदम कन्या डर जाती है, भाग भाग के राधा रानी के पास आती है, अरे महाराज जी बहुत नाराज हो रहे हैं, वो शायद भस्म भस्म कर देंगे। तो राधा रानी फिर भी प्रेम से खीर बना रही है। तो वो आते हैं वहां पर, देखते हैं कौन उनकी नायिका कौन है। जब महाराज जी, राधा रानी बोलती है क्यों इतने नाराज हो रहे हो, थोड़ी खीर तो खा लो, गरम गरम है, बहुत बढ़िया बन गई। तो राधा रानी का एक स्वभाव है कि वो जब कोई भाषण करती है, संवाद बोलती है, वो एकदम इतना मधुर और सम्मोहक होता है, हिप्नोटाइजिंग, हर टॉक इज वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग एंड हिप्नोटाइजिंग, बहुत मधुर भाषण है उनका। तो इतने गुस्से में आए हुए दुर्वासा मुनि एकदम आनंद में आ जाते हैं जब उनकी मधुर वाणी सुनते हैं, और हाथ आगे करते हैं और तुरंत मट्टी के बर्तन में मट्टी ही देके कहते खीर खा लो, कहते तो खीर ही है, वो खेल में बन रही है। और दुर्वासा मुनि खाने लगते हैं उसको, वो खा रहे खा रहे खा रहे, उनको बड़ी दिव्य स्वादिष्ट खीर खाने का अनुभव हो रहा है, और इतने प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं, एकदम तृप्त हो जाते हैं, खा रहे हैं मट्टी ब्रज की, हाँ, लेकिन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनको वरदान देते हैं कि आज से आप जो भी कुछ बनाएंगी उसका स्वाद अमृत जैसा होगा, अतुल्य नहीं होगा, कोई उसके श्रेष्ठ स्वाद नहीं होगा, और जो भी उसको खाएगा वो रोग से मुक्त हो जाएगा, और तीसरा परिणाम जो भी उसको खाएगा वो हमेशा यश और कीर्ति प्राप्त करेगा। तो बड़े खुश हो जाते हैं, सब जगह खबर फैल जाती है राधा रानी ने इतना बढ़िया वरदान पाया है, इतने क्रोधित ऋषि हैं मुनि हैं, लेकिन कैसा वरदान पाया उनसे। तो फिर वो खबर फैल जाती है बरसाने में, फिर नंदगांव फैलती है, यशोदा मैया को सुनती है, वो कहते कि इतनी बढ़िया कन्या है ये, इतने अच्छे गुण है उनके अंदर, ऐसा वरदान प्राप्त किया है, तो हमारे कन्या के लिए इससे बढ़िया वधू और कौन हो सकती है। तो उसी से मन में विचार चालू है, क्या करना है, कैसे करना है इसको, कैसे बात छेड़नी है। तो एक दिन यहाँ पर एक उत्सव होता है, उस उत्सव में उनको निमंत्रण होता है, तो उनको लेके आते हैं, कृष्ण बलराम को और स्वयं नंद महाराज को लेके आते हैं, विश्वानु महाराज, कीर्तिदा मैया है ना, विश्वनाथ महाराज राधा रानी के पिताजी हैं, कीर्ति मैया उनकी माता है, तो स्वागत करते हैं उनका और भोजन वगैरह होता है, अच्छी अच्छी बातें होती है। उसके बाद में यशोदा अपने मन की बात जो है एकांत में वृषभानु की पत्नी कीर्ति मैया से वो बात कर लेती है कि क्या ये मुमकिन है कि आपकी सुलक्षणी कन्या जो है वो हमारे एक पुत्र के लिए भोजन बनाने मुमकिन है। अभी ब्रज में ऐसा वातावरण रहता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, चाहे वो बरसाने में हो, जावट में हो, नंदगांव में हो और कहीं भी वृंदावन में हो, सब लोग एक ही चाहते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा करें। यहां पर तो उपवर कन्या है, वो सोच रही है कि यही हमारे कन्या के लिए सच्चे सबसे बढ़िया वर जो है यही है, उनके मन में भी ये बात है लेकिन कैसे करें उसको, तो अपने आप बात छेड़ रहे हैं तो वो तुरंत हाँ कर देते हैं उसको। तो उस दिन से ये सिलसिला जो है वो चालू होता है, यहां से जाना नंदगांव में और वो पावन सरोवर में यशोदा घाट है जहां पर यशोदा मैया स्नान करती है, वहां पर वो एक कुआं खोद देती है विशेष और उस कुएं के पानी से वहां पर रसोई का इंतजाम हो जाता है और वहां पर जाके रसोई बनाती है। अभी देखिए ध्याये तो विषयां पुंसा, जब हमारे मन का विषय जो होता है हमारे सामने होता है तो उसके बारे में चिंतन भी होता है ना। आपको जलेबी खानी है, अभी जलेबी आप मुमकिन नहीं तो आप ज्यादा विचार नहीं करेंगे, लेकिन जलेबी खानी है और जलेबी की दुकान के सामने रहेंगे तो क्या होगा आपका, हाँ? और आपके सामने जलेबी तल भी रही है अच्छी तरह से और निकल भी रही है और चाशनी में भी जा रही है और वो प्लेट में भी डाल रहा है आपके सामने, तो कितने विचार आएंगे आपके मन में, क्या क्या विचार आएंगे, कितने जेब में पैसा है, कितनी भूख है, डायबिटीज तो नहीं है, कितने खा सकते हैं, दो चार, कितना सब हिसाब किताब, कितने मन में विचार आते हैं। ये शास्त्र में लिखा है सभा, मैं बोल रहा हूँ। ध्यायते विषय पुंसा मतलब हमारे इच्छा का विषय हमारे सामने जब आता है तो उसके बारे में अनंत विचारों की लहरें मन में उठ जाती है। और ये खाने के बारे में हो, अगर कोई प्रिय व्यक्ति है, हमारी प्रियतमा है, प्रियतम है, वो सामने आते हैं तो नहीं हो सामने होते भी इतने विचार आते हैं उनके मन में, हमारे मन में। तो वैसे इनका विचार क्या है कि सोच रही कन्या के लिए कितनी बढ़िया बहू है, और पहले सोच रही घर में बैठ के, जब वो नहीं आ रही है, अभी वो घर में आने लगी है, रोज बनाती है जाती है वापस, तो रोज उनके मन में विचार आ रहे हैं अरे कब ये बात करें। एक दिन ऐसे अनंत बार आने के बाद में उनको भावना में इतनी वो विभोर हो जाती है कि वो एकदम भावना विभोर कि यही मेरी पुत्र वधु है, यही मेरी बहू है, सोच के उनके हाथ लेती है अपने हाथ में, रसोई में लेके जाती है, हल्दी निकालती है, उसको हाथ में मल देती है भावनावश में, मतलब वाग निश्चय करते हैं उसका, हाँ एंगेजमेंट कर देते हैं। तो फिर वो आंखों में आंसू आते हैं उनके, गले लगाती है राधा रानी को, बड़ा प्यार करती है, दुलारती है, और उसको बाद में ध्यान में आ रही है मैंने क्या कर दिया, ना उसी माता से बात किया, ना पिता से बात की, ना कुछ ढंग से कुछ शिष्टाचार के अनुसार कुछ किया, सीधे जाके बच्चे को अपने आप ही अपने इंडिपेंडेंस के अंदर हल्दी लगा दिया, ये कोई रिवाज नहीं होता। अभी क्या कहेंगे वृषभानु महाराज और क्या बोलेंगी कीर्ति मैया, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, यही कोई रिवाज होता है, हाँ नंदगांव के बड़े महाराज हैं, यहाँ कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं है, बिना पूछे लड़की की सगाई कर दी अपने लड़के के साथ में, मतलब ये जब कोई सासू जी होने वाली जब हाथ में तुलसी हल्दी लगाती इसका मतलब यह है कि उसकी पुत्र से विवाह होने का निश्चय कर लेती है वो। राधा रानी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो दिखा नहीं पाती कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो बड़ी सुसंस्कृत कन्या है, तो वो अपनी सखियों को लेकर बड़ी खुश होते हुए यहाँ पे आती है और उसकी भी खुशी यहाँ पर आने के बाद भंग हो जाती है, अरे अभी मैया क्या बोलेगी, रस्ते में बहुत खुशियां हो रही है आनंद में, लेकिन जब बरसाने के बॉर्डर में आती है तो उनके मन में विचार था मैया को क्या जवाब दूंगी, पापा को क्या बोलूंगी, क्या कहेंगे सखियां, क्या यही सीख के आई हो, यही सीखा था पिताजी माताजी ने आपको सिखाया था कि कहीं भी जाके हल्दी लगा के आओ, वाग निश्चय कर अपने आप कर आओ, तो क्या कहती सखिया क्या करें अभी, बड़ी समस्या हो गई। बोले कोई बात नहीं, यहाँ पर बड़ी विशाल कुंड है उसमें आप हाथ धो लो, तो यहाँ पर आती है और हाथ धो लेती है सब कुछ, हाथ से हल्दी वल्दी मिटा देती है, देखते कुछ नहीं, सखियों को दिखाती है सब बढ़िया है ना काम, कुछ नहीं है हाथ में, कुछ नहीं है, अभी आराम से जाओ घर पे। लेकिन घर जाते हैं सब लोग आराम से अपने अपने, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही होता है। इस जगह पर ब्रज में सब कुछ दिव्य होता है ना, हम कुछ समझते हैं क्या होता, कुछ और है, तो ये पूरा कुंड जो है वो पीला हो जाता है। और फिर अगले दिन सब लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, स्नान करने के लिए, अरे ये तो पूरा पूरा कुंड पीला कैसे हो गया, तो फिर तर्क कुतर्क चालू होते हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, लेकिन ब्रजवासी वो बहुत चतुर रहते हैं वो, है ना, क्योंकि भगवान के प्रेम में रहते हैं ना हमेशा, वो हमेशा भगवान के प्रेम में सेवा में रत रहते हैं, बड़े चतुर रहते हैं वो, बुद्धि भी उनकी उस तरह चलती है, बोले नहीं जरूर ही यशोदा मैया ने इनको हल्दी लगाया है और उसको मिटाने के लिए यहाँ पर हाथ धोया है, सबका एकमत हो जाता है। और वो खबर लेकर जैसे कि हम लोग मान ही लेते कि ऐसा ही हुआ है, कंक्लूडेड ऐसा ही हुआ है, जाके यशोदा कीर्ति मैया को जाके मिलते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, तो ऐसा क्या रही, क्या बात है किशोरी जी? हाँ मैया ऐसा ही हुआ है। तो ऊपर से वो नाराज होने का बहाना कर रही है, मन ही मन बहुत खुश हो रही है, जो हमारे मन भी इच्छा है वही पूरी हो रही है अपने आप, हमारे बिना प्रपोजल के, हम तो कन्या वाले हैं, यहाँ से प्रपोजल लेके जाएंगे, वो बाद में बातें होंगी, उसके बिना अपने आप ही काम हो रहा है तो कौन उसको छोड़ेगा। तो वो उन्होंने जो अपने अनजाने में प्रस्ताव रखा है अपने बेटे के हाथ पर हल्दी लगाकर, कुछ हमको उसको प्रतिसाद देना चाहिए, वी शुड रिस्पॉन्ड। तो वो ऋषभानु महाराज बड़े अमीर थे, मतलब श्री जी जो है वो सारे ऐश्वर्यों का उगम है, सभी वो तो भाग्य की भाग्यों की भाग्य लक्ष्मी है, वो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, और श्री जी ने जन्म लिया है वो घर में तो सब अमीर होंगे ही होंगे। तो ऋषभानु महाराज नंद महाराज से भी अधिक अमीर थे, बहुत उनके पास में अनेकों भंडार थे, हीरे मोती रत्न पांचू ऐसे जितने भी रत्न होते हैं उतने उनके अनंत भंडार थे उनके पास। तो वो मोतियों का भंडार खोलते हैं, एक बैलगाड़ी भर के मोती डाल देते हैं उनके अंदर, दो चार मोती नहीं पॉकेट में रखे हुए, बैलगाड़ा भर के मोती देते हैं और वो भेज देते नंदगांव भेंट के रूप में। बैलगाड़ी पहुंचती है, देखते हैं अरे, तो मतलब उनको संकोच था ना, अभी क्या सोचते होंगे क्या सोचते होंगे, लेकिन जब बैलगाड़ा आती है तो उनको बड़ी खुशी होती है, अरे एकदम रिलैक्स हो जाते हो, क्या हमने सोचा था कि हमारे लिए भी क्या क्या अपराध किया हमने। लेकिन जब उनकी तरफ से अनुकूल प्रतिसाद आता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं मोती बड़े कीमती है, अभी हमको भी कुछ प्रतिसाद देना चाहिए। तो वो सोचते हमारे पास तो मोती नहीं है तो क्या करें, अभी कैसे करें, इतने मोती भी नहीं है। तो कन्हैया जी थोड़े से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बाबा का क्या समस्या है। तो वो कहते हैं कि हमें दे दो, हम तो खेती में डालेंगे उसको तो बहुत खेती हो जाएगी उसकी। तो वो कहते हैं कि अरे तो बालक है इसको तो पता नहीं है। नहीं बाबा मैं देखता हूँ आप चावल डालते हो गेहूं डालते हो और एक गेहूं के दाने में से कई दाने निकलते हैं, हमने सुना है कि एक चावल के दाने से 250 चावल के दाने निकलते हैं, इतनी शक्ति है भूमि के अंदर, हाँ कितना व्यवस्था भगवान ने बना के रखा है। तो हम भी डालेंगे एक मोती और बहुत सारे मोती पैदा करेंगे। तो सब हंस पड़ते हैं, वो सब लोग नहीं नहीं कोई बात नहीं हम कल करेंगे उसको, ऐसे करके बंद कर देते हैं सब मोती जो है वो तिजोरी में बंद कर देते हैं। और उसमें से एक मोती हमारे कन्हैया जी जो चोर शिरोमणि है, जानते हैं ना आप, सब चोर में श्रेष्ठ शिरोमणि जो है वो कृष्ण भगवान है, वो एक मोती चोर लेते हैं और जाके पीछे जाते घर के अपने और वहां पर आंगन में गड्ढा खोदते हैं दोस्तों को लेकर, उसमें मोती डाल देते हैं, ऊपर से मट्टी डाल देते हैं और थोड़ा जल भी देते हैं। और यहां पर वो देखता है अरे कहां गया मोती, मोती कम है उसके अंदर, तो समझ जाते हमारे तो गांव में पूरा एक ही चोर है सबसे बड़ा, उसको बुलाते हैं, बोले क्यों ऐसे किया तुमने, नहीं नहीं अरे आपने तो इतना समस्या था आपको कल चिंता में थे इसलिए हम ने उसको समस्या समाधान करने के लिए कार्य किया है, बोले क्या किया है, तो वो जमीन को बो दिया आपने कहा था ना, मैंने कहा था आपको कल मैं बो दूंगा उसको, मैं बो दिया है, अरे यार तुम कैसे होगा अभी आपका, कोई बात नहीं। अगले दिन आता है कहता है बाबा आ जाओ आ जाओ, देखो कितना बढ़िया पौधा है। बाबा सोचते हैं अरे हम तो कई धान्य डालते रहते हैं है ना, अभी देखो आप गेहूं के खेत में कुछ सरसों के भी फसल आती है, क्यों कुछ कुछ दाने यहां गिर जाते हैं तो फिर उसके बीच में उसके भी आ जाते हैं, तो हमने तो कई दाने फेंके हुए हैं ऑलरेडी, तो उसके पौधे आते होंगे, नहीं नहीं बाबा आपको आना है, नहीं नहीं। तो बच्चे की बालक की बात मानने के लिए बाबा जाते हैं, देखते हैं पौधा आया, हाँ बहुत बढ़िया है आपका मोती अभी बहुत बढ़िया पौधा आया है, ठीक है ठीक है। अगले दिन जाते बोलते हैं फिर चले आओ पौधा बड़ा हो गया है, तो फिर जाते हैं, हाँ उनको पता है कि बालक है इसको कुछ पता नहीं है, तो ये गेहूं आने वाला है इसके अंदर। कुछ दिन बाद बहुत आग्रह करते हैं माता तुम भी आ जाओ, बाबा तुम भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, देखो कैसे खेती हुई है। तो जोर से ठहाका मार के सब लोग हंसते हैं, अरे कैसा बालक है। और जब जाते हैं देखते हैं तो पूरा मोती का खेती, पूरा खेत जो है मोतियों से चमक रहा है, अनंत मोती उसके अंदर। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे हमारे कन्हैया जो बड़ा विचित्र बालक है, हाँ हमको लगा था कि ये तो मजाक कर रहे हैं ये हो रहा है, लेकिन देखा तो पूरा खेती हो रही है। तो सारे मोती बिन लेते हैं तुरंत तुरंत, हाँ तभी बोलते नहीं है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, पूरा बिन लेते हैं और बैलगाड़ी में भरते हैं और भेज देते हैं वापस रिटर्न गिफ्ट के रूप में। यहाँ पर भी ये लोग चिंतित हैं कि हमने तो भेज दिया उनका गिफ्ट वगैरह, पता नहीं क्या सोचते होंगे वो। तो जब उनकी बैलगाड़ी आती है तो बहुत खुशी होती है उनको, तभी तो बात सब सही है, दोनों तरफ से राजी है, अभी आगे बात बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो राधा रानी वो मोती देखती है, तो उस मोती को लेके जाके वहां पर इंदुलेखा देवी है शायद उनका गांव है, जानते हैं क्या आप लोग, किस कोई है ब्रजवासी यहां पर, कोई बात नहीं, वो डभारा गांव है, वहां पर जाके वो राधा रानी उस मोती को बो देती है। और वहां पर संक्षेप में कहा जाए तो उस मोती के वजह से रत्नों की खेती होती है, रत्न उगते हैं, आज भी वहां पर रत्न कुंड विराजमान है जहां पर राधा रानी ने अपने हाथ से मोती बोए थे और उससे रत्नों की खेती हुई थी। और फिर वो रत्न जो है वापस बैलगाड़ी में डाल के फिर नंदगांव भेजते हैं, इस तरह से पता नहीं कितनी बार होता है और कई बार ऐसे होने से फिर उनको भी सब बोलते हैं अभी बढ़िया मौसम है, सब लोग का भावना अच्छी है, तो सब गोपियां जो है उनको भी इच्छा है कृष्ण के विवाह करने की, कोई द्वेष नहीं है कि राधा रानी का हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन सब लोग मन से कृष्ण को वरते हैं और राधा रानी के मन में भी कोई द्वेष नहीं करे मेरे प्रियतम के ऊपर इनका भी विचार चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिव्य बातें समझना बहुत मुश्किल है, ज्यादा विस्तार में नहीं बोलेंगे। तो गोपियां जाती है पूर्णमासी के पास और पूर्णमासी जो है वो कृष्ण भगवान हरी शंकर भगवान की पत्नी पार्वती देवी का अवतार है, वो पूर्णमासी बनकर आती है और सब गोपियों की गुरु बन जाती है, सब गोपियां यशोदा मैया भी उनसे सलाह करती है हमेशा कुछ बात पर, तो सब गोपियां उनके पास पहुंचती है और कहती है पूर्णमासी मैया अभी बहुत अच्छा वातावरण है, सबका मन अनुकूल है, सब बढ़िया चल रहा है और आप लोग अभी अच्छा मुहूर्त निकालना और राधा और कृष्ण का विवाह का अरेंजमेंट करना उसका। तो पूर्णमासी बड़ी चतुर है, बड़ी विद्वान है, वो सांदीपनी की माता है, सांदीपनी मुनि की माता है जो भगवान कृष्ण के आगे जाके गुरु बने हैं उज्जैन में, और इनका पुत्र है मधुमंगल। तो हरे कृष्णा, कुछ कुछ नोट भेजते रहते हैं यहां पर, वो नोट की कोई कीमत नहीं, 100 रुपए 2 रुपए ऐसा कुछ नहीं, खाली एक ब्लैंक नोट है ये हमें नोट की जरूरत है कैंप में तो कोई बात नहीं। तो ब्रज का एक विशेष रस है यहां पर, यहां पर कोई जो भी लीला होती है वो ऐसे ही लुका छुपी छुप छुप कर मिलना, फिर कभी भगवान कोयल बनकर मिलते हैं कोकिला वन में राधा रानी को, कभी संकेत वन में छुप छुप के मिलते हैं और संदेश देते हैं, और राधा रानी और वृंदा देवी और सखियां सब छुप छुप के इंतजाम करते हैं उनका मिलने का, यही इसका रस है ब्रज का। द्वारका में तो पूरा ऑफिशियल है काम, सब है ना, एवरीथिंग ऑफिशियल, विवाह किया, सब पत्नियां भगवान के घर में गई, अच्छे अच्छे महल में रही, पुत्रों को संतान को उत्पन्न जन्म दिया, सब ऑफिशियल है, कोई लुका छिपी नहीं है, कोई रानी भगवान को छुप छुप के नहीं मिल रही है आंगन में और बगीचे में और कहीं वन में जाके नहीं मिल रही है, रात को किसी कुपियों की व्यवस्था से उनका श्रृंगार हो रहा है और छुप छुप के जाके मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, कोई सासू जी पीछे नहीं आ रही उनकी। लेकिन यहां पर जो भाव है उसका भाव मतलब है परकीय रस, परकीय रस का अर्थ है कि भगवान की कोई पत्नी रत्नी न होने के बावजूद भी वो भगवान से प्रेम करती है, ये उनका बड़ा दिव्य विषय है ये। लेकिन उस भाव को बनाए रखना पूर्णमासी जानती है कि ये ब्रज का रस है, अगर ये सब गोपियों का विवाह कृष्ण से हो जाएगा तो फिर रात को बांसुरी बजाना, सब कुछ छोड़ के भागना जंगल में, फिर रास नृत्य करना, फिर कोकिला वन में कोकिल बन के मिलना, संकेत वन में संकेत देना, वो शिव जी के मंदिर से पीछे जाकर खड़ा रहना, नंदगांव में इशारे करना, वो सब खत्म हो जाएगा, तो ब्रज का रस खत्म हो जाएगा पूरा। तो वो उस रस को बनाए रखना चाहती है, उसकी सेवा है वो, तो कहते नहीं नहीं अभी आकाश में तारे सब सही जगह पर नहीं है, सब मुहूर्त वाला योग जो है वो सही नहीं है, विवाह के लिए अनुकूल नहीं है, तो अगले किसी समय पर हम लोग उसका विचार करेंगे। इसलिए वो बड़ी कुशलता से सब गोपियों की ये जो उभरती हुई बात है उसको डाल देती है और सब गोपियां नाराज हो जाती है, इतना अच्छा समय था, सबकी इच्छा पूरी होने वाली थी, तो वो नाराज होती है कि अरे हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, कृष्ण हमारे पति कब बनेंगे। तो कार्तिक महीने के बाद में कात्यायनी व्रत करती है, देवी की पूजा करती है, देवी वो देवी जो पूर्णमासी के रूप में बैठी है वही देवी उसकी पूजा करते हैं, कात्यायनी उसका ही रूप है, जमुना किनारे बालू का वो जो मूर्ति बनाकर उपवास करती है, उनको भोग लगाती है, उनकी आरती पूजा करती है, एक ही मन में ब्याज विचार है उनके कृष्ण हमारे पति बन जाए, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि सब भक्तों के मन में क्या क्या इच्छा है। तो फिर वो बछड़ों को चुराते हैं ना ब्रह्मा जी, बहुत लंबी कथा है, अभी छोड़ संक्षेप में बताएंगे, ब्रह्मा जी बछड़ों को चुराते हैं और रूपा में बंद कर देते हैं, फिर भगवान कृष्ण जो है सारे रूपों में अपने आप को विस्तारित कर देते हैं, अनंत रूप जितने बाल बाल है सब खुद बन जाते हैं, अनंत गायें जो साथ में है वो खुद बन जाते हैं, हुबेहू बन जाते हैं, सुदामा मधुमंगल श्रीदामा रक्तक उज्जवल सुबल भद्र सबके रूप में विस्तार हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। एक साल तक ये लीला चलती है, ब्रह्मा जी एक क्षण के बाद देखने को आते हैं, उनका एक क्षण जो है वो हमारे एक साल की तरह है, वो गुफा में बंद करके एक क्षण के बाद में आते देखते हैं कि अरे वो तो वही चल रहा है सब कुछ, बीच में एक साल गुजरता है, रोज गौचारण रोज लौटना सब कृष्ण थे। तो फिर वो उस एक साल के अंदर कृष्ण भगवान नंद महाराज से बोलते हैं, बाबा ये बहुत अच्छा मौसम है, अभी सब गोपियों का सब गोपालों के साथ विवाह कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो स्वयं है ना सबके घर में बैठे हुए, सब स्वयं है वो सबके पुत्रों के रूप में सब गायों के बछड़ों के रूप में, क्योंकि उस समय भगवान वत्सपाल थे तो गाय उनके पास नहीं थी, सब बछड़े थे उनके पास, सब बछड़े बने वो, और सभी गायों को भी इच्छा थी कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करें, तो सब बछड़ों के रूप में सब गाय अपना दूध देती है भगवान कृष्ण को, और सब माताओं को इच्छा है कि भगवान कृष्ण हमारे पुत्र बने, तो सब माताओं को पुत्र बनने का आनंद देते हैं, और फिर रही गोपियां तो बाबा से कहते हैं कि सबका विवाह कर दो, तो उस एक साल में सारी गोपियों का विवाह जो है सब गोपालों का साथ में हो जाता है, और एक साल तक भगवान उनके पति होने का आनंद उनको देते हैं। एक साल के बाद जब लौटते हैं ब्रह्मा जी, देखते हैं कि सब ग्वाल बाल वहीं खेल रहे हैं, तो उनके आंखों के सामने वो प्रकट करते हैं विष्णु स्वरूप, हर एक ग्वाल बाल हर एक बछड़ा जो है वो चतुर्भुज विष्णु बन जाता है, अनंत विष्णु वहां पर आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं, और हर एक विष्णु चतुर्भुज जो है उनके साथ में 33 करोड़ देवताओं का एक सेट है जो उनका पूजन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, उनको रिझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कितने अनंत विष्णु स्वरूप और कितने अनंत 33 करोड़ के सेट्स देवताओं के, ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, माफी मांगते हैं भगवान से, तब जाकर वो ग्वाल बालों को छुड़ाते हैं, बछड़ों को छुड़ाते हैं, और फिर वो ओरिजिनल बछड़े और ग्वाल बाल घर में लौट जाते हैं, और उसके बाद वो बात करते घर में, अरे सुना बाबा कल तू कन्हैया ने गगासुर का वध किया था, एक साल के बाद बात क्यों करते हैं, क्योंकि एक साल वो गुफा में निद्रिस्त अवस्था में सम्मोहित अवस्था में थे, अगेन हिप्नोटिज्म, सो मेनी लीला ऑफ हिप्नोटिज्म फॉर द प्लेजर ऑफ दीनबंधु प्रभु, जगह जगह हिप्नोटिज्म आता है ब्रज में पता नहीं क्यों सम्मोहन लीला ब्रह्म सम्मोहन, तो सबकी फिर सब लोग जो है ग्वाल बाल जो उनके पति थे है ना, वो तो तभी कृष्ण थे, अभी तो वो ओरिजिनल आ गया ना वहां पर, तो उनका लीला ऐसा है कि वो कभी भी उन्होंने पत्नी के रूप में अपनी पत्नी के साथ व्यवहार नहीं किया, उनका सेवा एक ही था, उनको विरोध करना भगवान से मिलने के लिए और उनकी उत्कंठा बढ़ाना, हर कदम पे पत्नी के रूप में उनको विरोध करना भगवान से मिलने के लिए, और उनके मन की उत्कंठा को बढ़ाकर जब वो भगवान से मिलेंगे ऐसे उत्कंठा में छुप छुप के तो बड़ा आनंद आएगा उसके अंदर, यही उनकी सेवा थी। और जो सासुएं थी जैसे राजा रानी की सासू थी और ननंद थी जटिला और कुटिला, उनका भी यही सेवा था, बड़ी भक्त थी भगवान की वो, लेकिन उनकी बड़ी विचित्र सेवा थी, वो क्या सेवा थी, हर समय उनका पीछा करना, हर समय उनके डांटना उनको, हाँ क्या क्या करना, वो कंप्लेंट करना ये करना डांटना उनको, बंद करना घर में बंद करके रखना, क्या क्या करते रहते वो, केवल एक ही विचार से कि इनका उत्कंठा बढ़े भगवान को मिलने का, जब मिलेंगे तो कितना आनंद होगा, इनकी अभिमन्यु प्रधान के पत्नी थे पति थे, उनका भी यही काम था। हाँ वो कृष्ण भगवान बहुत लीला करते हैं उनके साथ में, एक लीला बताऊंगा आपको जाने के पहले, हाँ टाइम नहीं हो गया ना बहुत सारा तो अभिमन्यु जी एक बार मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार में, तो कृष्ण भगवान अभिमन्यु बनकर आ जाते हैं और कहते हैं सुनो मैया, मतलब माता को कहते हैं और बहन को बोलते हैं, सुनो बहन जी और माता जी, ऐसा है कि अभी कृष्ण भगवान जो है वो बाजार में मेरा रूप लेके डोल रहे हैं, अभी आ जाएंगे सब्जी वब्जी लेके आ जाएंगे, बोलेंगे कि यो मैं ही हूँ, मतलब अपने आप आ जाएंगे ऐसे, लेकिन वो समझ लेना कि वो कृष्ण भगवान है तो बच के रहना, और राधा रानी को जब बंद करके रखना अपने, फिर चले जाते हैं, मैं जाके बाजार में सब्जी लेके आता हूँ, चले जाते हैं, और कुछ देर बाद में अभिमन्यु ओरिजिनल अभिमन्यु जो है वो सब्जी वब्जी लेके आ जाते हैं बड़े, और बिंदास में घर में घुसते हैं आराम से एकदम अपने घर की तरह, तो आते ही सब लोग सखियां छुपी हुई हैं झाड़ू लेकर हाथ में, और जैसे आते हैं और झाड़ू से उसको पीट पीट के पीट कर लो, मैया मैं आपका पुत्र हूँ, अरे पुत्र हो अच्छे पुत्र बन रहे हो आओ, तब डंडे से पीटते हैं उसको, ऐसे कई लीलाएं जावट में हैं जो भगवान करते रहते हैं, छुप छुप के मिलते हैं, और एक बार क्या होते हैं, अंधेरे में जाके उनको मिलते हैं गोपियों राधा रानी को घर में, और बात करते रहते हैं, दरवाजा बंद है, वो अंदर से आवाज आ रही है, राधा रानी किससे बात कर रही है, और ये कृष्ण की आवाज है, तो सब लोग घेर लेते दरवाजे को और झट से 1 2 3 कर दरवाजा धक्का मार के खोल देते, तो अंदर कृष्ण गायब, तुरंत खिड़की से कूद जाते हैं वो लेकिन बांसुरी भूल जाते हैं, बोले देखो झूठ नहीं कहना, कौन था अंदर, कोई नहीं था, देखो कोई है, तो ये बांसुरी किसकी है, तो राधा रानी ऐसे बोल देती है, अरे मैया ये बांसुरी की वर्षा हुई थी आज, वो आकाश से बांसुरी गिरी थी, बोले अच्छा चलो देख लेते हैं, बाहर जाके देखते सब जगह बांसुरी गिरी हुई है, सब जगह पे, मैंने कहा था ना मैया कि बांसुरी की वर्षा हुई है आप देख लो, अरे हाँ सही बात है नंदी बंदी करके एक जगह है, यहाँ पर बहुत जगह है वैसे, तो वो हमेशा देवी की पूजा करने के बहाने राधा रानी बाहर जाती थी, तो सब साहित्य लेके है ना, इनको पता है कि ये सब बहाने हैं, तो इनके पीछे पीछे जटिला गुटला जा रहे हैं, कहाँ जा रही है पूजा करने के लिए, देखो कौन सी देवी है, देखो जरा, जाते हैं बहुत अंदर, और वो सबको पता रहता है, उनकी उनकी जो असिस्टेंट रहते हैं वो भी उनके पीछे पीछे रहती है हमेशा, तो देवी के मंदिर में जाती है, तो वहां पर कृष्ण भगवान आते हैं, अच्छे अच्छे बातें होती है उनकी, चुप चुप बातें कर रहे हैं, और अचानक पीछे से जटिला कुटिला आ जाते हैं, अभी आप देखो जो मेरी तरफ कृष्ण खड़े हैं इस तरफ मुंह करके, राधा रानी आपकी तरफ बैठी है और मुझे मेरी तरफ मुंह करके बात कर रही, तो वहां से जटिला कुटिला दूर से आती हुई नजर आती है, तो राधा रानी तो मग्न है ना बात करने में, उनको तो होश ही नहीं है, कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं, नजरों में नजरें मिल रही है, तो क्या और दुनिया में उनके लिए क्या है, तो कृष्ण भगवान देखते हैं, अरे सासू जी आ रही है, तो अचानक देखते हैं राधा रानी, अरे तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया एकदम, पलके भी नहीं हिल रही है, अरे अचानक देवी बन गई है, तो वो आते हैं और दूर से देखते हैं कि अरे हाँ किससे बातें हो रही है, हाँ उनको पकड़ेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे, जैसे पास में आते हैं तो सामने आते देवी एकदम पूरा अलंकार लेके, पूरा मुकुट पहन के, माला वाला पहन के, नथनी पहन के, लिपस्टिक और सब श्रृंगार और सब करके, अरे एकदम क्या होता है, तो मुड़के देखते तो क्या हो रहा है, जटिला को दंडवत प्रणाम कर रही है, जटिला कुटिला देवी को प्रणाम कर रही है, बोले क्या हम लोग क्या सोचते हैं, देखो वो तो देवी की पूजा कर रही है, देवी खड़ी है और पूजा हो रही है, अच्छी तरह से चले जाते हैं, जैसे जाते हैं देवी देव देव बन जाते हैं फिर बातें होती है, यही ब्रज का रस है, इसको बचा के रखने के लिए पूर्णमासी ने विवाह को लिए मना कर दिया था, तो ये वो जगह है जहां पर राधा रानी ने हाथ धोए थे, उसी जगह पर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया ना, तो कृष्ण भगवान ये जो लीला हुई हाथ धोने वाली, तो अभी तक सगाई वगाई कुछ हुआ नहीं है, तो कृष्ण भगवान ऐसे घूमते घामते इधर आ जाते हैं, वो देखते हरी पीला रंग का कुंड है, राधा रानी का रंग भी ऐसा ही इसकी जैसा ही, हाँ सुनहरा रंग जो है, उनको राधा रानी की याद है, वो कैसा पीला रंग है, व्हाट इज दिस येलो सब्सटेंस, ऐसा बात करते करते भाव विभोर हो जाते हैं, कृष्ण भगवान बालक है ना, भाव विभोर हो जाते हैं, और धीरे धीरे इसकी सीढ़ियां उतरते हैं, उतरते हैं, उतरते उतरते पानी में प्रवेश करते हैं, एक ही प्रश्न उनके मन में है, मुख में भी वो दोहरा रहे हैं कि ये पीला वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस, ऐसा बोलते बोलते पानी में उतरते हैं, उतरते 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 जाते हैं, उतर जाते हैं, सर से भी पानी चढ़ता है, हाथ ऊपर है ऐसे उनके, ऐसे हाथ ऊपर है, हाँ आप करो सब लोग हाथ ऊपर, ऐसे जय हो गौरांगा, ऐसे हाथ ऊपर करके पानी में जाते हैं, और कुछ देर बाद में गोलखावल उनको हाथ दिखाई पड़ते हैं, और वो आगे आगे जा रहे हैं, पानी में घूम रहे हैं, सब जगह पे हाथ ऐसे ऊपर है, सब विद्वास इकट्ठा होते हैं, देखते हैं अरे कौन है क्या है, हाथ ऊपर है ऐसे, हाँ, और जब बाहर आते हैं तो पूरे पीले रंग के हो जाते हैं, गौर वर्ण के, सुनहरे रंग के हो जाते हैं, और वही प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस, ये पीली वस्तु क्या है, इसी रहस्य में घूम रहे हैं, वो पूरे पीले रंग से भर गए, तो वो चैतन्य महाप्रभु का रूप जो है सबसे पहले विश्व में, उनका अवतार होने के पहले सबसे पहले द्वापर में उन्होंने यहां पर वो दिखाया, और सब लोग समझ गए कि ये पीला वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है कोई बता सकता है, ये राधा रानी का प्रेम है भगवान के प्रति, जिसके विचार से, जिसकी भावना से, जिसको अनुभव करने से वो प्रेममय हो गए, वो प्रेममय कृष्ण भगवान मतलब गौरांग महाप्रभु, तो आगे जाकर हम आपको आज दोपहर को बताएंगे और एक जगह है जहां पर उन्होंने ये रूप दिखाया था उनका, लेकिन सबसे पहली जगह जो है ये है, तो ये जो पीला रंग है इसको सबको अभी आचमन कीजिए, आप फटाफट प्रणाम कीजिए। यही पीला रंग के अभिलाषी है, हा? ये पीला रंग राधा रानी का रंग है, सुनहरा रंग है, गौरवर्ण। और कृष्ण भगवान इसी रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सभी अंतर्यामी, सब ज्ञानी, सब ज्ञान के स्रोत है कृष्ण भगवान, लेकिन ये नहीं समझ सकते हैं कि ऐसी क्या मुझ में वस्तु है जो देखकर राधा रानी इतना मुझसे प्रेम करती है। और वैसा कौन सा आनंद है जो मैं देखता हूं कि वो मेरी सेवा में हमेशा उसको अनुभव करती रहती है। वो आनंद मुझे अनुभव नहीं हो रहा है जो मेरी सेवा में वो अनुभव करती है ना। तो मैं अगले जन्म में इसी भावना को लेकर अवतार लूंगा, भक्त बनकर राधा रानी का भाव लेकर अवतार लूंगा। और जो मेरी सेवा में राधा रानी आनंद लेती है, वो मैं स्वयं राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण भगवान की सेवा करके वो सेवा का आनंद मैं अनुभव करूंगा। तब मैं शायद समझ पाऊंगा कि ये दिव्य आनंद क्या है जो राधा रानी उसका अनुभव कर रही है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली बार उस नोट के साथ कुछ नोट भेजा करो, ठीक है ना। जय जय श्री राधे श्याम। अमल तब होता है कुछ माल होता है साथ में।